Thank you so much, ma'am. Ranjana ma'am, Prabha ma'am, Sajya and Anil ji. मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे याद है 1995 में लगभग 20 साल होने वाले हैं जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन प्रेसिडेंट का जीता था और 96 में मुझे मौका मिला था जामिया में आने का. उस समय मोहम्मद फौजी थे जो आपके ही जामिया से में पढ़ रहे थे और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था और मैं उनके प्रचार के लिए आई थी. फौजी भाई जीत गए और उनका राजनीति का सफर और हम दोनों का दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया से शुरुआत उस तरीके से हुई. लेकिन मैं फौजी भाई को जरूर मोहम्मद फौजी भाई को याद इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मुझे लगा मैं यहाँ पर अगर आई हूँ तो उन्हें जरूर याद करूँ क्योंकि जब भी मैं जामिया का नाम आता है या उसमें कदम रखती हूँ मुझे फौजी भाई के साथ अपने संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं. और अगर मैं बात करूं 20 साल का राजनीतिक सफर, मुझे मालूम नहीं, बहुत लोग मानते हैं कि मैं एक महिला के तौर पर राजनीति में बहुत कामयाब रही. कामयाब वो मानते हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे संघर्ष को जानते हैं और उनको लगता है एक कामयाब है. और जो लोग सोचते हैं कि क्या 20 साल की राजनीति में आप ना नगर निगम पार्षद रही, ना आप एमएलए बन पाई, ना आप सांसद बन पाई, तो क्या है ये फेलियर है. यानी कि आपने राजनीति में जब तक आप सांसद विधायक मंत्री लाल बत्ती या आपको बंगला गाड़ी ल्यूटन्स दिल्ली में नहीं मिला है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है. पर मुझे लगता है इन 20 सालों में अगर मैं अपने पिछले का सफर देखती हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट से लेकर एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, दिल्ली हिंदुस्तान का कौन सा कोना है जो मुझे देखने को, युवाओं से मिलने का, महिलाओं से मिलने का मौका ना दिया हो इस हिंदुस्तान की राजनीति में. और लगभग 20 सालों में मैं अगर गिनती करूं तो कम नहीं होगा 20 लाख युवाओं से मैं इसी तरह आमने सामने मिल चुकी हूं, बात कर चुके हैं, उन्हें हम तैयार कर चुके हैं आने वाली राजनीति के लिए. तो मुझे लगता है मेरा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. आप अगर सिर्फ इसे पद से देखेंगे तो शायद आज भी मैं कुछ नहीं हूं. 20 साल कांग्रेस में दिए, उसके बाद 2011 में मुझे लगा कि पता नहीं, जब दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी उस समय हिंदुस्तान की राजनीति को एक युवा के तौर पर जो मैं देख रही थी वो सपने, वो ये जगह ही नहीं है, पता नहीं हमेशा, लेकिन कब जिंदगी के 20 साल निकल के पता ही नहीं लगा कि अगर ये वो जगह नहीं है तो वो जगह क्या है, वो कौन सी जगह है. तो 2011 से एक एनजीओ मेरा अपना है, गो इंडिया फाउंडेशन, उसमें सक्रिय हो गई और राजनीति को थोड़ा मैंने लेफ्ट पे रख के और अपना एनजीओ से युवाओं को जोड़ना शुरू कर दिया. मुझे लगा शायद युवा जुड़ना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में नहीं आना चाहता, वो समाज में बदलाव चाहता है लेकिन वो राजनीति के पटल पे ना खड़ा होकर एक गैर राजनीतिक पटल से शायद काम करना चाहता है. और मैं उसको जब तक राजनीति में हूं मैं उसे अपने साथ नहीं ले पा रही हूं. तो गो इंडिया फाउंडेशन से मैंने पूरे देश में दोबारा घूमना शुरू किया, युवाओं को जोड़ा और बहुत से अच्छे काम भी किए जो मुझे आज भी गर्व कहराते हैं कि जो मैं शायद राजनीति में होकर युवाओं का सहयोग नहीं ले पा रही थी वो 2011 से मैंने लिया. उसके बाद आम आदमी पार्टी एक सामने आया और लगा कि मैंने अपने हिंदुस्तान की राजनीति में जो सपने देखे थे उसे जीरो तो होने नहीं दूंगी. ठीक है, 2011 से लेकर लगभग 2014 तक मैंने राजनीति से ब्रेक लेकर सामाजिक कार्य किए. लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब मैंने सुना या रामलीला मैदान में जो आंदोलन चल रहा था, लगा कि राजनीति में मुझे भी शायद आप जैसे युवाओं की तरह एक विकल्प की जरूरत थी. क्योंकि वो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं लग रहा था जिसको युवा सोच रहे थे कि यहां यही वो दल है, यही वो पार्टी, यही वो लीडरशिप, वही ये सोच और विचारधारा है जो जिसमें मैं शामिल होना चाहता हूं, कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा था. और मुझे भी बहुत सालों बाद ऐसा कमी सी लगती रही. लेकिन जब मैंने अरविंद को देखा, स्वराज का नारा मैंने सुना, स्वराज के को समझा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में युवाओं का योगदान, रोल, जो पार्टिसिपेशन की बात हुई उसको बहुत करीब से देखा, तो लगा मुझे विकल्प मिल गया है. मुझे राजनीति छोड़कर घर नहीं बैठना, मुझे सफर को जारी रखना है. वापस राजनीति में मैंने जो है 1 जनवरी 2014 को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली और उसमें अरविंद जी के साथ मैं पूरी तरीके से कंधे से कंधा लेकर कर काम कर रही हूँ। बहुत लोगों की आशाएं भी जुड़ी थी, बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग हट गए, बहुत लोग अभी भी हैं। हमें मालूम है ये जो संघर्ष और लड़ाई है ये बहुत लंबी है, क्योंकि ये लड़ाई सत्ता की थी ही नहीं हमारी। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद हमारी लड़ाई जो है वो दिल्ली और केंद्र की सत्ता की थी। मैं साफ कर रही हूँ, ये लड़ाई कभी भी सत्ता की नहीं रही, ये सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए थी। वो व्यवस्था परिवर्तन जो भ्रष्ट हो चुकी थी, वो व्यवस्था परिवर्तन जो गरीब के लिए बिल्कुल बंद हो चुके थे जिसके दरवाजे। ये स्वराज का नारा वो कहता था कि गरीब को अगर राशन नहीं मिल रहा, बूढ़ी माँ को पेंशन नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो स्वराज आपके हर हक और अधिकार को आपके दरवाजे पर लाकर जो है वो खड़ा करेगा। ये जो बात थी मुझे बहुत ज्यादा लगी कि हाँ यही तो था जिसके लिए शायद मैंने 1995 में 20 साल पहले जब राजनीति में शामिल हुई थी कि सबको लेना है, साथ लेना है, जाति धर्म से ऊपर उठकर करना है। तो आज उसी मकसद के साथ मैं आज भी इस आंदोलन के साथ, मैं आज भी इसे आंदोलन कहती हूँ, एक राजनीतिक दल नहीं कहती हूँ। अरविंद साफ कहते हैं जिस दिन हमें लगेगा कि लोगों को भ्रष्टाचार से के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत हथियार मिल गया है, एक पारदर्शिता आ चुकी है, युवा जो राजनीति में दूर थे वो अब शामिल हो चुके हैं और अपने फैसले खुद ले रहे हैं, उस दिन शायद आम आदमी पार्टी की भी आवश्यकता जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, उस दिन शायद अरविंद केजरीवाल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे मकसद में हम कामयाब हो चुके होंगे। और आज भी आम आदमी पार्टी में 28 लोग विधानसभा चुनकर आए। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को मौका मिला है आम आदमी पार्टी के विधायकों से बात करने का। अगर आप बात करेंगे, मिलेंगे, कभी कोई राजनीति में रहने की तो बात दूर है, सोचा भी नहीं होगा जो विधायक बनकर आए। पर सब युवा हैं, सब एक आम आदमी है, आम परिवार से हैं, जिन चुनाव पे अनिल जी ने बताया कि 40-40 लाख खर्च होता है, मुझे तो लगता है वो 4,000 भी उनके खर्च नहीं होने दिए। और आज वो विधायक है, और विधायक ही नहीं, जो 4 करोड़ का फंड मिलता है उसे स्वराज के तहत मोहल्ला सभाएं करके खर्च कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा सपना था, अगर आप किसी भी विधायक के साथ आपको समय लगे, आपको लगे कि मुझे एक महीना बिताना है राजनीति को समझने के लिए, स्वराज को समझने के लिए, या ये युवा जो विधायक बन चुका है, विधानसभा पहुंच चुका है, ये किस तरीके से देश की राजनीति को बदलाव के लिए काम कर रहा है, तो मैं आपसे जरूर कहूंगी समय जरूर निकालिएगा। और हमारे 28-27 विधायक हैं, उनमें से अगर मौका मिले शामिल हुई उनके साथ, समझिए हिंदुस्तान की राजनीति क्या है, समझिए हमारे सपने और मकसद क्या हैं, और तब मुझे लगता है आप एक बहुत बड़ा जो है उसमें रोल जो है वो प्ले कर पाएंगे। जहां तक मेरी बात है, महिलाओं पे भी मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि हमारी अगर शुरुआत करते हैं तो कन्या भ्रूण हत्या सबसे बड़ी बात, एम्पावरमेंट, पार्लियामेंट में हमारी जगह, वो सब मुझे लगता है हमारा संघर्ष तो मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। आज बच्ची गर्भ में जिंदा रह पाएगी नहीं रह पाएगी, लड़ाई तो वहां से शुरू हो रही है। इस बच्ची को जब हम बचा पाएंगे गर्भ में मां की, पढ़ा पाएंगे, लिखा पाएंगे, शिक्षित कर पाएंगे, पैरों पे खड़े होने की आजादी मिलेगी कि पढ़ो लिखो अपने पैरों पे, जो रोजगार करना चाहती हो, जो आप करना चाहते हो, जो पैसे कमा के अपने आप में गर्भ महिलाएं करना चाहती हैं, आप करिए, आपको आजादी है इस देश में जीने की। आज मैं अपनी मां को इसलिए यहां पर याद करूं कि अगर मेरी मां ने भी पुत्र की चाह सबको थी, उस समय भी थी और आज भी है, मेरी मां को भी थी पुत्र की चाह, पर अगर मेरी मां ने कन्या भ्रूण हत्या कर दी होती तो मैं आज आपके सामने खड़ी नहीं होती। मेरी मां की एक नहीं, हम लोग एक बहन हुई, पुत्र की चाह में दूसरी, पुत्र की चाह में तीसरे नंबर पे मैं हुई, फिर चौथी, पांचवी और छह बहनें हुई, पुत्र की चाह मां को थी। लेकिन आज मालूम नहीं, समय के साथ मेरी मां गर्व करती है कि मुझे आज महसूस नहीं होता कि मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियां बेटों से ज्यादा मुझे गौरवान्वित महसूस करा रही है, मेरी बहनें। तो सोच और नजरिया लड़ाई वहां से थी। तो मेरा संघर्ष मुझे लगता है कई बार मेरा नहीं है, बहुत सी लड़कियों को ऐसा लगता होगा ये तो हमारी ही कहानी है, और संघर्ष घर से शुरू होता है। मैं तो गर्भ में पहुंच गई कि गर्भ से लेकर, गर्भ में अगर बच्ची ने जन्म ले लिया तो घर की चार दीवारी की इनको पढ़ाया लिखाया जाए, इसमें बेटी और बेटे में, भाई और बहन में फर्क नहीं किया जाए, इन्हें वही शिक्षा दी जाए, वही आजादी दी जाए, वही ताकत दी जाए जो भाई और लड़के को और बेटे को दी जा रही है। और जब परिवार की, जब मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का मिला, मैं उस समय 18.5 साल की थी, प्रेसिडेंट लड़ने के लिए मेरी मां खड़ी हो गई डंडा लेकर कि तुम लड़की हो और लड़कियों को राजनीति कतई भी नहीं। मेरी मां ने डंडा ले लिया, लेकिन पिताजी थे कि नहीं, मुझे पता है तुम कर दिखाओगी और जिस दिन तुम साबित करोगी मां अपने आप मान जाएगी। और चुप करके उठ के जाती थी, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रचार कराती थी कि टीवी और अखबार मां के सामने मत रख देना, उसको पता लग जाएगा मैं लड़ रही हूं चुनाव। और वही हुआ, जब जीती तो माँ के सामने अखबार लाकर रख दी कि पहले अखबार पे था दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन का चुनाव एक महिला ने जीता और मेरी माँ गौरवान्वित हुई। यानी कि साबित करने के लिए भी आपको बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। शादी हुई तो दहेज के लिए लड़े, पिताजी सरकारी नौकरी में थे, 6 बहनें थी, तो लगा कि नहीं मेरे पिता किस तरह से सरकारी नौकरी से हम 6 बहनों को पढ़ा लिखा रहे हैं, किस तरीके से हमें शिक्षित कर रहे हैं। बहन की पहली की शादी हुई, दूसरी की शादी हुई, कर्जा लिया। सरकारी नौकरी में 7 लोगों को पालना, शादियां करना संभव नहीं था, कर्जे लिए। जब मेरी हुई तो मैंने बोला कि मैं बिल्कुल 2 कपड़ों में अगर कोई स्वीकार करेगा तो ठीक है, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। शादी की लेकिन दहेज का लालच पीछे पीछे, लड़ाई लड़ी उसके खिलाफ भी कि समझौता नहीं करेंगे और दहेज की बलि भी नहीं चढ़ेंगे। क्योंकि आज भी अखबारें उठाएं रोजाना देखने को मिलता है कि गाड़ी नहीं दी इसलिए जला दिया, पैसा जो किया था वायदा कि शादी के बाद इतना पैसा देंगे नहीं दिया तो फांसी पे लटका दिया। आज भी हो रहा है, मैं तो 15-16 साल पहले की बात कर रही हूं, तब से आज तक स्थितियां कितनी बदली हैं हमारे लिए। अभी गुजरात का एक पोस्टर कल से दिखाया जा रहा है जिसमें गुजरात की महिला मुख्यमंत्री, एक पोस्टर बहुत बड़ा है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री का भी तस्वीर दिखाया जा रहा है, उसमें महिलाओं को किस तरीके से पहनावा उनका होना चाहिए उस पर हमें बताया जा रहा है। क्यों नहीं लड़कों के लिए वो पोस्टर लगा कि एक लड़के को सड़क पे निकलते हुए पराई महिला की तरफ किस नजर से देखना चाहिए, क्यों नहीं उसके ऊपर पाबंदियां लगा के उसे शिक्षित किया जा रहा है, क्यों हमारे ऊपर आज भी हमारा पहनावा ऐसा था इसलिए हमारे साथ वो अपराध हो गया, इसलिए आप हम पे उंगली उठाते हैं, उस अपराधी को आराम से निकलकर जाने देते हैं। निर्भया की बात हो रही थी, निर्भया के अपराधी आज भी हमारे बीच में जिंदा घूम रहे हैं। एक को नाबालिग के माफ कर दिया जाता है, दूसरे की फांसी माफ करने की बात हो रही है और 2 की फांसी पर रोक लगा दी गई है। कैसे बदलेगा ये सब, कैसे, कब, कहां, किस समय, कब तक चलेगा? तो बात यह है कि संघर्ष और लड़ाई बहुत बड़ी है। वो जो मेरी बहन पीछे जिसने बात कही थी कि 9 महीने बच्चे को जब रखा जाता है और जब वो पैदा होता है, वो जो दर्द होता है, जो हिम्मत होती है, आज कहते हैं जैसे उन्होंने कहा पुरुष के तुलना जो है ताकत की महिला से की जाती है और कहा जाता है पुरुष ताकत में ज्यादा जो है वो हिम्मत रखते हैं, महिलाएं नहीं। पर उनकी सच्चाई है कि एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि मैं भी एक मां हूं और मैं उस मां के 9 महीने गर्भ को वो पुरुष शायद नहीं जान सकते, लेकिन खुदा ने वो हमें ताकत दी है कि उस 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखना, सबकी मां ने रखा उसको, उस समय जब जन्म देती है वो जो दर्द होता है, ये हकीकत है कि वही दर्द अगर एक पुरुष को सहना करना पड़ जाए तो एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। वो ताकत हमें उस खुदा ने दी है, उसकी इज्जत करनी है। और एक शब्द इस पर जरूर कहना चाहूंगी जिन्होंने ये बात उठाई थी कि कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है, ये हकीकत है। और आप सभी से बहुत बड़ा भाषण नहीं दूंगी, 10 मिनट हो गए हैं मेरे, मौका मिलेगा मुझे लगता है बार बार मिलेगा। लड़ाई बहुत लंबी है, चुनौतियां बहुत सारी हमारे सामने हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगी ये देश आपका है, ये हिंदुस्तान आपका है, ये आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है, हो सकता है आप इसकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, लेकिन पहल आपको करनी है, पहल आपको करनी है। आपको तय करना है कि आपका जिंदगी का मकसद क्या है, खुद के लिए, देश के और समाज के लिए। हमने अपना तय कर लिया होगा सबने कि अभी मुझे यहां से ये एजुकेशन करके पूरी जो है आगे की पढ़ाई ये करनी है, फिर इस कंपनी में नौकरी करनी है और इतने लाखों का पैकेज लेना है, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, उसके लिए किसी ने प्लानिंग किया है कि मुझे 2 साल में 3 साल में मुझे ये काम को समाज के लिए अपने हाथ में लेना है और उस काम को मुझे अंजाम तक पहुंचाना है? कितने लोगों ने, कोई बताएगा मुझे कि किसी की डायरी भी ऐसी लिखी जाती है सुबह कि ये एक चीज मुझे बहुत खलती है मेरे देश की और इस देश इस चीज को लेकर मुझे जो है कुछ करना है और तब मैं कह सकूंगा कि मेरा भारत महान है क्योंकि मैं उसके लिए कुछ महान कर रहा हूं? कोई एक शख्स, किसी की डायरी मेंटेन हो रही हो? सलाम आप दोनों को। मैं बाकियों को कहूंगी हम नहीं चाहते कि आपको एक सेल्फिश का तबका मैं देकर जाऊं यहां से। नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, कभी तो शुरुआत होती है, किसी दिन किसी समय शायद वो शुरुआत आज ही है। लिखिए अपनी डायरी कि देश की ये चीज जो है वो मैं बदलना चाहता हूं और इसी को लेकर मैं एक लड़ाई जो है वो आगे ले जाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत रंजना जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ मेरी ट्विटर मेरी फेसबुक से आप जुड़े रहेंगे हम सब मैं कहाँ जा रही हूँ हिंदुस्तान में क्या कर रही हूँ आप मुझे कब कहाँ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको कब कहाँ कैसे शामिल होकर एक दूसरे को हम ताकत दे सकते हैं और अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब सिर्फ एक इसे मुलाकात एक तरफा नहीं रहने देंगे हम इस मुलाकात को एक एक क्या कहते हैं रिश्ते में बदल देंगे हम सबका एक रिश्ता बन जाएगा कि हम कहीं भी हैं एक दूसरे की आवाज को ताकत पे नजर रखते हुए कहीं कोई गलत है तो उसे सही रास्ते पर लाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे जय हिंद जय भारत धन्यवाद